તારીખ 9/5/1995 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 210, 14 અને 89 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 347
दो नंबर का रचनामृत है प्रारंभ में अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और जिसे आत्मा के सच्चे लगन मिली उसके आत्मलगन ही उसे मार्ग कर देंगे। नामव्रत निमित्ताधीन दृष्टि का है, स्वयं के अनुभव से ज्ञानी बताते हैं कि तू स्वयं मार्ग तो जानता नहीं है, अनादिकाल से मार्ग से तो अनजाना है और जानने वाले को साथ नहीं रखेगा तो तू एक डग भी कैसे भरेगा, कौन सी दिशा में तू आगे बढ़ेगा, सच्ची दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, गलत दिशा में आगे बढ़ता जाएगा और दूरी हो जाएगी। इसलिए ये सभी ज्ञानियों की शिक्षा है कि अपने से जो जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, उनको साथ रखना। तू स्वयं तो अंधा है, अनादि से अनजाना है, अनजाना कहो अंधा कहो एक ही बात है। और यदि गुरुवाणी एवं श्रुत का अवलंबन नहीं रखेगा तो अंतर में जो साधक का मार्ग है वह तुझे कैसे सूझेगा। स्वयं तो अंधा है, किधर जाएगा अंधा, किधर जाएगा वो अंधा को तो पता नहीं है। उसको कोई दौड़ने वाला मिलता है तो सच्ची दिशा में जा पहुंचना है वहां जा सकता है। और यदि गुरुवाणी एवं श्रुत का अवलंबन नहीं रखेगा, गुरुवाणी मैंने गुरु संघ और श्रुत मैंने शास्त्र का अवलंबन नहीं रखेगा तो अंतर में जो साधक का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, वह तुझे कैसे सूझेगा कि अपने आप सूझने की कोई परिस्थिति होती नहीं है। जीव को अनादि से विपरीत संस्कार तो हुआ ही है, जीव ने विपरीत संस्कार तो ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर चुका है, मति विपर्यास है, उसको मिटाने के लिए गुरु एवं शास्त्र का अवलंबन आवश्यक है। साधक का मार्ग है तो वो कैसे सूझेगा और सम्यक्त्व कैसे होगा, कि सम्यक्त्व होने की कोई परिस्थिति नहीं है। साधकपना कैसे आएगा और ये साधकपना तुम उनको कैसे प्रकट होगा और केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा, अंतिम जो ध्येय है वो कैसे प्राप्त होगा। अनंत काल का अनजाना, अनंत काल का अनजाना मार्ग गुरुवाणी एवं आगम के बिना ज्ञात नहीं होता। मार्ग मैंने उपाय, अनंत काल से जिस मार्ग से अनजाने हैं उसमें गुरु चाहिए, और गुरु हमेशा नहीं मिले तो उस वक्त आगम का अवलंबन लेना, लेकिन उदय में घुस जाना नहीं। सच्चा निर्णय तो स्वयं ही करना है, सच्चा निर्णय तो स्वयं को करना है। वो गुरु कुछ करते हैं, अपना कार्य करते हैं, वो कहने का अभिप्राय नहीं है। सच्चा निर्णय तो अपने को करना पड़ेगा, अपना कार्य अपने को करना है। अपना कार्य का बोझा हमें दूसरे पर डालना है और हमको निष्क्रिय रहना है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप हमको सुनाते ही रहो, हम तो कुछ आगे नहीं बढ़े। लाभ की बात भी अपना लगता नहीं है। सच्चा ध्यान नहीं हो सकता, सच्चे ज्ञान किए बिना कोई ध्यान करने का प्रयत्न करता है तो वो भी ध्यान किसी को सफल होता नहीं है। ध्यान कैसे होता है और ध्यान किसका होता है, किस प्रकार से होता है, ये जो ध्यान जिसने किया है उससे मालूम पड़ता है, अपने आप मालूम पड़ता नहीं है। ये कुछ बातें ऐसी है कि बिना प्रत्यक्ष समझाए समझी जाती नहीं है। क्या विश्व में ध्यान के ग्रंथ उपलब्ध नहीं है क्या है? बड़े बड़े आचार्यों के, ज्ञानियों के ज्ञान ध्यान के भी ग्रंथ तो मिलते हैं, लेकिन कोई ग्रंथ पढ़ के ध्यान कर ले ऐसा कभी बनता नहीं है। जिस आत्मस्वरूप का ध्यान करना है तो आत्मस्वरूप का पहला सच्चा ज्ञान होना चाहिए। ध्यान है वो एकाग्रता है, ध्यान है वो क्या है, एकाग्रता है। भगवान उमा स्वामी का सूत्र है मोक्ष शास्त्र में, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, क्या लिखा है, एक अग्र, इसको एकाग्र कहते हैं, किसी एक विषय में अग्र मैंने मुख्य हो करके किसी एक विषय को ज्ञान में मुख्य करके चिंता निरोधो, अन्य चिंता का उस विषय को छोड़ करके अन्य विषय की चिंता का निरोध मैंने स्वयं बंद हो जाना, उसी को ध्यान कहने में आता है। ऐसा कब हो कि जो चीज में सुख हो, जहां सुख हो वहां एकाग्रता होगी। एकाग्रता कहां करता है जीव, कि जहां उसको सुख का निश्चय हुआ हो वहां। जिसने आत्मा को अनंत सुख स्वरूप जाना, ज्ञान में लिया, वही आत्मा में ध्यान इसका सहज रूप से हो सकेगा। इसके पहले अनादि से जीव को पौद्गलिक पदार्थ में सुख है ऐसा निश्चय है। वो निश्चय स्वरूप की पहचान के काल में पहले बदल जाता है कि नहीं, मेरा सुख मेरे आत्मा में है और मेरे आत्मा में मेरा अनंत सुख है, कहीं बाहर मेरा सुख बिल्कुल नहीं है। जहां भी मुझे सुख लगता था वो मेरी भ्रांति थी, सुख नहीं था किंतु सुख विषयक आभास था, भ्रांति थी और यही दुख का कारण था। ऐसा सही ज्ञान होता है, पूरा निश्चय बदल जाता है, तो अपने आत्म स्वभाव में जो सुख भरा है उसके प्रति आसक्ति होती है। जीव को सुख के प्रति हमेशा आसक्ति होती है। पर पदार्थ में सुख है, पंचेंद्रिय के विषय में सुख है, तो वहां आसक्ति होगी, लेकिन वहां तो सुख है नहीं। अगर सुख होता तो एक ही विषय में से दूसरा विषय बदलने की जरूरत पड़ती नहीं। जिसको जो विषय सुख है, सुख लगा वहीं वहां रहता, लेकिन वहां वो रह सकता नहीं है। वहां भी वो कंटाल करके दूसरी जगह सुख ढूंढने के लिए इसका उपयोग चला जाता है। लेकिन आत्मा में ऐसा सुख है कि वहां स्थिर होने वाले सादी अनंत काल पर्यंत वहां सुख में विराजमान रह जाते हैं, निराकुल सुख में। इसलिए सच्चा ज्ञान, आत्मा का सच्चा ज्ञान बिना आत्मा का सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का पहले सबसे उपाय करना चाहिए। इसलिए तू श्रुत के अवलंबन को, यानी श्रुत के चिंतवन को साथ ही रखना, श्रुत के अवलंबन को भी साथ में रखना और उसका चिंतवन भी करना, पढ़ना भी और चिंतवन भी करना। कृपालु देव लिखते हैं कि वांचन से चिंतवन 8 गुना होना चाहिए। कितना? 8 टाइम्स मोर। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो तो इसका चिंतन 8 घंटा होना चाहिए। 1.5 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा चिंतन होना चाहिए। 1/2 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटा चिंतन होना चाहिए। पठन से, श्रवण से चिंतन ज्यादा होना चाहिए और ये स्वतंत्र विचारक रूप से होना चाहिए। अपना स्वतंत्र विचार करने की पद्धति होनी चाहिए। स्वतंत्र विचार मैंने अपने आप से वो बात समझ में आए ऐसी कोई विचारधारा होनी चाहिए। गुरु ने कहा इसलिए मान लिया, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं चलता। गुरु तो कभी परीक्षा करेगा, गुरुदेव करते थे, कभी उल्टे प्रश्न पूछते थे। क्या? कभी कभी उल्टे प्रश्न पूछते थे तो हाँ में हाँ भर दे क्या
है?
हमने सुना है कि कुछ बेंसरी को शुरू शुरू में परीक्षा काल में जब जाना हुआ अपने पुरुषोत्तम दास भाई कामदार जो भावनगर के अपने पुराने ट्रस्टी थे मंदिर के, वो लेके गए थे, वो बता रहे थे, बात वो किया था कि हम साथ में गए थे तो गुरुदेव ने पूछा कि तुमको ज्ञान हुआ है। मैत्री की उम्र तो 18 साल की थी, छोटी उम्र थी। तुमको ज्ञान हुआ है ऐसा ये लोग बताते हैं हमको, हमको तो तुम्हारा परिचय नहीं है, तो ऐसा करो ये शास्त्र की गाथा है इसका अर्थ करो, पता चले ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गुरु आज्ञा होकर के शास्त्र का अर्थ नहीं किया। क्या? गुरु आज्ञा समझ करके शास्त्र का अर्थ नहीं किया। गुरुदेव की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कितनी हिम्मत, गुरुदेव की उस वक्त उम्र होगी करीब 45 साल की, गुरुदेव 24 साल बड़े थे, 45 साल की उम्र होगी, उतने प्रभावशाली थे वो, तो अपने तो वृद्धावस्था में देखा है शरीर के, शरीर की युवावस्था में तो बहुत प्रभावशाली थे, कोई बात नहीं कर सके उसमें, बहनों को तो मजाल नहीं कि कोई बात करें इनके सामने आकर के, लेकिन गुरुदेव के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, शास्त्र वापस दे दिया। क्या बोले कि शास्त्र की गाथा का अर्थ आए तो ज्ञान है और अर्थ नहीं आए तो ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है, जाओ। कितनी हिम्मत, हाँ, उसका नाम स्वतंत्र विचारधारा है। प्रश्न क्या निकला है, स्वतंत्र विचार किसको कहते हैं, कि अपनी सूझ होनी चाहिए, स्वयं की सूझ होनी चाहिए, गुरु की बात को स्वीकार करता है लेकिन अपने साथ टैली करके, अपने परिणमन और प्रयोग में टैली करके सम्मत करता है। वैसे अंधश्रद्धा से मानने की बात यहाँ नहीं है,
चिंतन करना चाहिए, इसके पीछे आप ये कहना चाहते हैं कि प्रयोग करना
चाहिए। हाँ, चिंतन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तभी स्वतंत्र रूप से बात समझ में आएगी। किसी का उछीना लिया हुआ ज्ञान काम में, अपने काम में नहीं आता, ऐसे बोल दिया, फिर दिखा दिया अपना परिणाम। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि तो जगत से गाथा का अर्थ ना से ज्ञान नहीं है, तो फिर ज्ञान का स्वरूप क्या है, फिर किस प्रकार का ज्ञान हुआ है, तो कि ये हमारे में प्रकट वेदन रूप है ने, देख लो क्या
वेदन रूप,
ये जो वेदन रूप ज्ञान है वही ज्ञान है, गाथा का अर्थ जाने वो ज्ञान नहीं है। ऐसी चेष्टा से अपना वेदन को दिखा दिया, बात खत्म हो गई। स्वरूप से वेदन में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है, ऐसे स्वतंत्र विचारधारा होनी चाहिए।
अगर यही वाक्य कोई आपके पास आके अगर दोहरा ले जानने के बाद में, अगर यही वाक्य जानने के बाद में आपके पास आकर दोहरा ले, आप क्या करेंगे
उसमें, क्या है कि कहते वक्त वेदन का वेदन की चेष्टा होती है, ऐसे पता चल जाता है, ऐसे तो पता चल जाता है, बोले तो पता चले क्या, नहीं बोले तो भी पता चल जाता है, ऐसी बात है ये तो। देखिए आप सुनते हो, हाँ, आप भले ही मत बोलो लेकिन आप नहीं समझे तो हमको पता चल जाता है कि ये समझते नहीं है। आपके मुखाकृति के भाव पर से समझ में आ जाता है, आप बैठे हो सुनते को, लेकिन आपका आपको चलता विषय में आपका समझ नहीं है, आपको ख्याल नहीं पड़ता है कि क्या विषय चल रहा है, वो समझ में आ जाता है, बिना बोले भी समझ में आता है, बोलने से तो समझ में आ ही जाए, नहीं आए ऐसा बनता नहीं है। और परीक्षा के काल में उत्तर देना और गुरुदेव के पास उत्तर देना, ये कोई एरे गेरे का काम
नहीं है,
नहीं है। गुरुदेव के सामने आवे तो वैसे ही बहुत प्रताप प्रभावशाली थे, सामान्य आदमी तो बात नहीं करते थे, सामान्य पुरुष हो तो भी बाहर में सिंह जैसा बाघ जैसा हुए, गुरुदेव के पास जाए तो खत्म, बोल नहीं सके, ऐसे व्यक्ति तो था, वो ऐसे नहीं चलता। और गुरुदेव तो बहुत सूक्ष्म उपयोग के धारक थे, बहुत सूक्ष्म उपयोग के धारक थे, तो अपने अपने विषय में अध्यात्म के विषय में कोई गड़बड़ कर जाए वो बात चलती नहीं है।
गुरुदेव जी ने जो पूछा वो सही उत्तर दिया ना माता जी ने,
हाँ,
गुरुदेव ने क्या पूछने का था, क्या उत्तर नहीं बता, माता जी समझ गए,
हाँ
सही उत्तर हुआ।
हाँ सही उत्तर हुआ। तो हम जब गुरुदेव परीक्षा करके हमको कोई उल्टी बात बता रहे हैं तो ऐसे तो हम हमारे अनुभव को देखते हैं तो वो बात तो होनी चाहिए नहीं, तो फड़ाक सा उत्तर दे दिया। व्याथा का अर्थ नहीं समझे, भाषा का अर्थ नहीं समझे, तो ज्ञान नहीं है, ऐसी बात ज्ञान की नहीं है। और कोई विद्वान समझ ले इसलिए उसको ज्ञान हो गया, ऐसी बात भी नहीं है। गुरुदेव संस्कृत नहीं पढ़े थे तो कोई संस्कृत का शब्द का अर्थ भी पूछ लेते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अर्थ जानता है उसको ज्यादा ज्ञान है, ऐसा कोई होता
नहीं है,
नहीं है। श्रवण योग हो तो तत्काल बोधक गुरुवाणी। देखो ये गुरुवाणी में प्रत्यक्ष योग लिया है, गुरुवाणी में टेप वाली बात नहीं लिया है, पुस्तकारूढ़ वाणी हुई है वो बात भी नहीं लिया है। श्रवण योग हो तो तत्काल बोधक गुरुवाणी, कैसी गुरुवाणी है? तत्काल बोधक है, अभी सुना और उसका बोध बाद में मिलेगा ऐसी वाणी नहीं है, तत्काल बोधक गुरुवाणी है, सुनते ही ज्ञान होता है। गुरुदेव की वाणी में सामर्थ्य कितना था कि तुरंत ज्ञान हो जावे, ऐसा सामर्थ्य था और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है, जिसके एक प्रवचन से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए वो वाणी का निमित्तत्व कितना पावरफुल होगा। तो जिस वाणी जिस आत्मभाव में से निकली वो आत्मभाव का सामर्थ्य कितना, और जो आत्मा का अवलंबन से आत्मभाव उत्पन्न होता है वो आत्मा का सामर्थ्य कितना, 83 लगा देना कि जिसके तत्काल बोधक वाणी से जीव का अनंत जन्म मरण का चूर चूर हो जाता है, जैसे कोई तोप का गोला छूटे और सामने बड़ा किला होवे तो भी फुर्चा फुर्चा निकल जावे, ऐसे गुरुदेव की वाणी तोप के गोला जैसी थी, भव भ्रमण का छेद कर देवे, अगले का भव भ्रमण का नाश कर देवे। श्रवण योग हो तो तत्काल बोधक गुरुवाणी में, और स्वाध्याय योग हो, गुरु के उपस्थिति नहीं हो तो स्वाध्याय योग हो तो नित्य बोधक ऐसे आगम में, आगम को नित्य बोधक कहा है क्योंकि वो तो जब आप चाहो उपलब्धि है, घर में आगम रखे हैं तो वो तो आप जब चाहो वो तो नित्य बोध देने वाला है, वो नित्य बोधक कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रासंगिक बात नहीं है। प्रत्यक्ष सत्संग में तो सत्संग का प्रसंग मिलता है, शास्त्र तो हमेशा उपलब्ध होता है, इसलिए उसको नित्य बोधक कहते हैं। ऐसे आगम में प्रवर्तन रखना, दो जिज्ञासा प्रवर्तन रखना, पहले आगम की बात नहीं किया है, वो भी क्रम है इसमें। देखो बात बताने में भी क्रम है, क्रम शब्द का प्रयोग भले नहीं किया हो लेकिन अपने को अपने आप समझ लेना चाहिए कि गुरु का प्रत्यक्ष योग मिलता हो तो शास्त्र को छोड़ देना, शास्त्र पढ़ने के लिए बैठना नहीं, प्रत्यक्ष सत्संग को छोड़ करके शास्त्र का जो स्वाध्याय करता है उसको ज्ञान हो कभी होता नहीं है। गुरुदेव जो गाथा ले इससे ऊंची गाथा का स्वाध्याय करना कि नहीं घरे बैठ करके, हैं याद तो एक सामान्य गाथा व्यवहार नहीं कि आने वाली है। हाँ, और हमको तो छठी गाथा ग्यारहवीं गाथा बच्ची अच्छी अच्छी गाथा है। गुरुदेव का टेप लेकर के घरे बैठ जाए। हाँ, एक घंटे के व्याख्यान में एक ही वचनामृत अगर तेरी योग्यता का आया और तुझे चोट लग गई, हाँ, तो तेरा परिणमन सारा बदल जाएगा। आज पूरा घंटे के प्रवचन की भी जरूरत नहीं है, अपने प्रयोजन में एक चोट लग जाए अपनी योग्यता के भूमिका के अनुसार, निवेड़ा आ जाएगा, आंख खुल जाएगी। क्या है वो निंद्रा में जीव सोया हुआ है, उसकी आंख खुल जाएगी। तो कृपाल गुरुदेव लिखते हैं 569 नंबर का पत्र है 569। कोई तथारूप योग को प्राप्त करके अगर जीव को एक क्षण में कोई ऐसी क्षण आ जाए कि अंतर्भेद जागृति हो जाए, क्या शब्द प्रयोग किया है, अंतर्भेद जागृति हो जाए, अंतर का रहस्य खुल जाए और जागृति आ जाए, तो ऐसे मुमुक्षु को मोक्ष विशेष दूर
नहीं है,
मोक्ष के समीप आ जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष सत्संग को प्राधान्य दिया गया है और वो यथार्थ है। अगर ऐसा सत्संग उपलब्ध नहीं हो तो स्वाध्याय योग में आगम में प्रवर्तन रखना, इनके अतिरिक्त काल में भी वो दो प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो, ऐसे काल में भी गुरुवाणी एवं वो तो वही बात आई कि इनके अतिरिक्त काल में, मैंने दोनों नहीं हो ऐसे काल में, वही बात है, ऐसे काल में भी गुरुवाणी एवं आगम द्वारा बतलाए गए भगवान आत्मा के विचार और मंथन रखना। सब बात पूरी किया है, अधूरी बात नहीं किया। माथा मारे बिना नहीं रहेगा लेकिन अप्रयोजन, उसको प्रयास भी कहते हैं और प्रयोग भी कहते हैं। जैसे एक सीधी सादी बात तो है, कोई लंबी अटपटी बात नहीं है कि ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, आत्मा मैंने में, दूसरे की तो बात नहीं चल रही है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो अपने ज्ञान चलते हुए ज्ञान को ग्रहण करके है या अंदर से विचार चलता है। हाँ, मैं पना राग में शरीर आदि में रख करके मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा रटन चलता है अंदर से या अपने चलते हुए ज्ञान में से ज्ञान को ग्रहण करके, ज्ञान सामान्य को ग्रहण करके ऐसा आता है। बहुत सीधी सादी बात है, थोड़ा कोशिश करो। हाँ, ये कोशिश करके ये स्वाध्याय के दौरान हम कर सकते हैं, जब हम सुनते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है तो मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो अभी अभी वो बात हम आगे की बात सुनने में हमारा भले ही लक्ष्य छूट जाए। क्या
आगे
की बात, बात तो कहने वाले का तो कंटिन्यू बोलना रहता है, लेकिन जो प्रयोग में लग जाएगा उसका आगे की बात भले ही छूट जाए, लेकिन अपना कार्य करने में जो लग गया उसका कार्य होगा, उसका कार्य होगा ही होगा।
पूर्व भूमिका अपेक्षित है ना, बात
पूर्व भूमिका अपेक्षित है,
नहीं तो नहीं होगा, कर्म प्रयास हो जाएगा।
हाँ,
नहीं तो कर्म प्रयास हो जाएगा।
हाँ वो तो है ही,
पहले प्रयोग करने जाएगा तो कर्म में प्रयास हो जाएगा,
वो तो है ही। वो तो वो बात बार बार कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि काम तो अपने क्रम से होता है, कोई भी काम होता है अपनी पद्धति से होता है, वैसे कोई काम होता नहीं है। मकान बनाने में सीमेंट की आवश्यकता है तो क्या सीमेंट की जो बोरी होती है उसके ढेर लगा देते हैं क्या? उसको भी उसका जो मिश्रण है उस प्रकार से उसको बनाना पड़ता है, और उसके लिए भी मिस्त्री चाहिए। हम हमारे हाथ से करने जाएंगे तो होगा
नहीं,
तो काम तो काम की पद्धति से होता है। वो बात ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो जीव वेद उत्तम कोटि की मुमुक्षुता में नहीं आएगा वो तो वेद ज्ञान के स्टेज को ग्रहण कर पाएगा
नहीं।
और गुरुदेव तो हमेशा समाचार पढ़ते थे और हमेशा वेद ज्ञान की चर्चा करते थे, क्यों सबको ज्ञान नहीं हुआ? तो उस भूमिका में नहीं आए थे इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, अगर इस भूमिका में आते तो ज्ञान हो जाता। तो इसके लिए वो तो कहते थे कि पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए। कोई परमागम सार में वो बात लिया है, बात तो सब आई है परमागम संहिता में। नहीं वो तो क्या है कि अपना प्रयोजन की बात पर ही ध्यान जाना चाहिए। जो जिस भूमिका में उभा हो खड़ा हो उसमें अपनी भूमिका की बात पर ध्यान जाना चाहिए। बात सब भूमिका की आएगी क्या? गुरुदेव के प्रवचन में वो विशिष्टता थी कि बात तो सब भूमिका की आती थी, माल तो सबको मिले ऐसी परिस्थिति थी। इतना वाणी का अतिशय था कि सबकी भूमिका की बात आती थी, अच्छे अच्छे विद्वान को भी समझ में कठिन पड़े ऐसी बात सूक्ष्म भी आती थी और एक अनपढ़ भी समझ ले ऐसी बात भी आती थी, सब भूमिका की बात आती थी।
अपनी भूमिका की जो बात अपने को स्पर्श करती
है, हाँ
अगर 8 घंटा चिंतन मनन और उसका प्रैक्टिस चले,
हाँ
तो वो सत्संग के असर आवे
आए आए और आए,
हम पर जो असर नहीं आती है इसका मतलब है उन लोग वो उस पद्धति से कार्य नहीं करते
नहीं करते हैं। ठीक बात है। बहुत स्पष्ट नहीं संभड़ा तो अस्पष्ट थोड़ा
था। सूक्ष्म चर्चा में रस आता हो
किसमें?
सूक्ष्म चर्चा में रस आता हो और अपनी भूमिका के विषय में रस
नहीं आता हो तो इसका मतलब, तो इसका मतलब जो है कि हमारे प्रयोजन पर हमारा लक्ष्य नहीं है, दूसरी दूसरी बातों में हमारा लक्ष्य है तो हमारा काम होने वाला नहीं है, ये बात है।
और ये निजहित की गरज के अभाव में ऐसा होता
है, है?
ये परिणाम निजहित की गरज के अभाव में होता है।
हाँ निजहित की गरज नहीं है, प्रयोजन और जगह हमने हमारा प्रयोजन जो है वो पकड़ के रख लिया है। क्या बाह्य जीवन में हमारा जो प्रयोजन हमको लगा है वहाँ से हमारी पकड़ छूटी नहीं है, और पारमार्थिक आत्मकल्याण वाला प्रयोजन पर हमारा दृष्टिकोण आया नहीं है, एक जगह से छूटना पड़ेगा तब काम होगा, ऐसी बात है। ये ये जो रेफरेंस लेना था ना वो थोड़ा ले ले। ऐसा लिखते कि बहुत आत्मकल्याण के लिए कितने गढ़, कितने गढ़ को छोड़कर आगे जाना पड़ता है। गढ़ शब्द लिखा है, હા કેટલા ગઢ વળન વાપરશે, પાત્રતાનો વિષય લીધો છે, પૂછે મને લીયા હૈ। શરૂઆતમાં ના થોડા બોલમાં છે, કેટલા ગઢ ઓળંગી ગયા, ઓળંગ વાપરે એટલે કે પાત્રતા તૈયાર હો તો હી કામ હો સકતા હૈ। યાદ નહીં अब आगे का जो वचनामृत है 214 नंबर का वचनामृत 214। सदगुरु के उपदेश रूप निमित्त में पूर्ण शक्ति है, लिखा है अधूरी शक्ति है क्या,
नहीं
पूर्ण शक्ति है। एक चिंगारी में पूरी अग्नि की शक्ति भरी हुई है, परंतु तू तैयार न हो तो तू खुद तैयार न हो तो शक्ति तेरे में अंदर आ जाती है, ऐसा तो कोई बात बनता नहीं है कि ऐसा कोई काम कर देगा कोई दूसरा काम करेगा, वो बात तो नहीं है। तुम तैयार हो तो वो काम की चीज है, तुम्हारी तैयारी नहीं हो तो काम की चीज नहीं है।
शिष्य का उपादान आया ना, शिष्य का उपादान,
हाँ शिष्य का उपादान और गुरु का निमित्त, जो का योग होता है तो काम हो जाता है। सदगुरु के उपदेश रूप निमित्त में पूर्ण शक्ति है, परंतु तू तैयार न हो तो, गुरु तो यही कहेगा कि तेरी तैयारी नहीं हो तो हम तो माल देते हैं तुम लेता नहीं है, हम क्या करें, हम तो माल देते हैं पर तुम नहीं लेता है तो हम क्या करेंगे। तू आत्मदर्शन प्रकट न करे तो तुमको प्रकट तो तुमको करना है, अपने पुरुषार्थ से करना है। अनंत अनंत काल में अनेक संयोग प्राप्त हुए, अनंत अनंत काल में अनेक संयोग प्राप्त हुए, मैंने सद्गुरु भी मिले, सर्वज्ञ भी मिले, सत्संग भी मिला, परंतु तूने अंतर में डुबकी नहीं लगाई, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, अंदर में जाने का तुमने पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ नहीं करे तो वाणी है, गुरु गुरु के स्थान में है, वाणी वाणी के स्थान में, तुम पुरुषार्थ नहीं करे तो क्या काम की चीज है। तू अकेला ही है, अब विचार कर तो कि तू अकेला ही है, एकत्व भावना का वचनामृत है, बारह भावना में एकत्व भावना आती है ना, पद्मनंदी पंचेश्वर में तो एकत्व पंचाशक करके अधिकार है पूरा। तू अकेला ही है, सुख दुख भोगने वाला तू अकेला है, स्वर्ग या नरक में गमन करने वाला केवल तू अकेला ही है। उसमें कोई पार्टिसिपेट करेगा, भाग पड़ाएगा, ऐसा बनने वाला नहीं है। और अनुभव से वो बात प्रसिद्ध है सबको, थोड़ा भी टैली करें अनुभव से तो वो बात समझ में आ जाती है। मरता अकेला जीव एवं जन्म एका की करे, पाता अकेला ही मरण पर मुक्ति एका की करे। मुक्त हो गया तो भी एकला, जन्म मरण हो गया तो भी अकेले का। तू अकेला ही मोक्ष जाने वाला है, इसलिए तू आत्मदर्शन प्रकट कर। दूसरा क्या करता है नहीं करता है वो देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा दूसरे की जाने। हमको हमारा काम जैसे कैसे भी कर लेना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना स्व प्रयोजन मैंने स्वार्थ उसमें जीव पक्का हो जाना चाहिए। बाहर में तो है, संसार में तो है ही पक्का, क्योंकि वहां प्रयोजन भाषित हुआ है तो वहां तो पक्का है। वो पक्कापन तो परिभ्रमण का कारण है, वो पक्कापन छोड़ के परमार्थ मार्ग में पक्कापन आना चाहिए। गुरु की वाणी सुनकर विचार कर और प्रतीति कर, विश्वास कर, विचार कर और विचार करके विश्वास कर, ऐसे ही नहीं विचार करके विश्वास कर और स्थिर हो। विचार कर मैंने ज्ञान कर, प्रतीति कर, श्रद्धा कर और जो भी सुना है उसमें स्थिरता प्राप्त कर, उसमें दृढ़ता को प्राप्त कर, तो तुझे अनंत ज्ञान एवं सुख का धाम ऐसे निज आत्मा के दर्शन होंगे। विचार प्रतीति और स्थिर में श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों गुणों का परिणाम ले लिया है, तीनों का परिणाम ले लिया है। विचार ज्ञान प्रतीति श्रद्धा स्थिरता वो चारित्र, तो तुझे अनंत ज्ञान एवं अनंत सुख का धाम ऐसा निज आत्म स्वरूप का दर्शन होगा। कथनचित होगा कदाचित नहीं होगा वो बात लेते
नहीं है,
अवश्य होगा। जैसा गुरु कहता है ऐसा अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा तो अवश्य उसका फल मिलेगा ही
मिलेगा।
गुरुदेव के उपकार के भी बात बात लिया है। अब पेज नंबर 14 है, उसमें 289 नंबर के वचनामृत हैं, 289। चैतन्य की गहरी भावना तो अन्य भव में भी चैतन्य के साथ ही आती है। अभी भावना में आ जाओ, आत्मस्वरूप की आत्मकल्याण की प्राप्ति की गहरी भावना। कैसी भावना?
गहरी
अंतर के उड़ान से जो भावना उत्पन्न आई हो वो भावना छूटेगी नहीं। अन्य भाव में क्यों काम में आएगी? वो भावना लेके जीव जाएगा, देह छूटेगा तो भावना लेकर के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इसलिए वो साथ में रहेगी भावना। ऊपर ऊपर के परिणाम होते हैं वो छूट जाते हैं। जैसे हमने कई प्रकार के धर्म साधन किए भूतकाल में, तो वो हमको पता ही नहीं है कि हमके क्या हमने क्या क्या किया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऊपर ऊपर से हुआ था तो वो बात का संस्कार भी रहा नहीं। लेकिन जो अंतर से गहरी भावना से जो बात उठती है वो भवांतर में भी वो परिणमन साथ में चालू रहता है, भवांतर में वो परिणमन साथ में चालू रहता है और बहुत शीघ्रता से फिर और तेज गति से काम करने लग जाता है, वो ऐसा बनता है। चैतन्य की गहरी भावना तो अन्य भाव में भी चैतन्य के साथ ही आती है। आत्मा तो शाश्वत पदार्थ है ना, आत्मा एक भाव वाला नहीं है, आत्मा शाश्वत पदार्थ है। तो जो सदा टिकने वाला है वो अपने स्वरूप की भावना को लेकर के परिणमन करता है, वो भावना वृद्धिगत हो जाती है। अन्य भाव में भी साथ में वो भाव चालू रहता है, ऊपरी विचारों में नहीं, जो लिखा है ना ऊपरी विचारों में नहीं, परंतु अंतर में मंथन करके, क्या ऊपर ऊपर के विचार आ जाए और ऐसा क्यों होता है, ये ऊपर ऊपर के विचार क्यों रहते हैं, किसी को अंदर से आता है, बहुभाग ऊपर ऊपर से चलते हैं। जो आंकड़ा की परिस्थिति ऐसी है कि एक तो संप्रदाय में से छूटकर सच्ची बात सुनने वाले भी की संख्या सबसे कम है, संप्रदाय में तो 1% भी अपना लगता नहीं है। और इधर वो जो सैकड़ों लोग आते हैं, कितने आते हैं, वो भी सैकड़ों लोग आते हैं, उसमें से ऊपर ऊपर से चलने वाले ज्यादा होते हैं, अंतर की गहराई से भावना उठे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो संसार की माया है, संसार में जो प्रयोजन है उसका जो आकर्षण है वो प्रयोजन छोड़ता नहीं है जी, उसकी महत्व, उसकी अधिकाय, उसकी प्रीति, उसकी रुचि जीव छोड़ता नहीं है। तो इस क्षेत्र में आता है, सुन लेता है, लेकिन इसका ऊपर ऊपर से जाता है। कुछ एक जीव ऐसे होते हैं कि उनको इस विषय का मूल्य आता है और संसारे संसार को गौण करने का वो निर्धार करता है कि हमको सारे संसार को गौण करके एक यही काम कर लेना है। तो ऊपरी विचारों में नहीं, परंतु अंतर मंथन करके तत्व विचार पूर्वक गहरे संस्कार डाले होंगे तो वे साथ आएंगे। इतनी बात लिया है, अंतर मंथन करके, आगे भी मंथन शब्द का प्रयोग किया था। मंथन कह रहे हैं कि जैसे हम दही को मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, ऐसे जो बात हमको प्रयोजनभूत लगी उसका विचार मंथन अंदर में बहुत चलना चाहिए, बहुत मंथन चलना चाहिए उसका, और मंथन करके उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, जैसे मक्खन निकलता है वैसे। ऐसा चलता है जिसको लगन लगती है उसको ऐसा अंदर में चलता है। तो ऐसे करके जिसने संस्कार डाले होंगे, भावना से भी संस्कार होते हैं, रुचि से भी संस्कार होते हैं, तो दूसरे भव में साथ आएंगे। वो बात वो तो कहीं भी जाएगा तो वहाँ उदय में तल्लीन नहीं हो जाएगा, उनको ये आत्मकल्याण का भाव चालू हो जाएगा कि मैं मेरा आत्मकल्याण कैसे करूँ, ये बात उनको अंदर से आने लगेगी। उस पर यहाँ एक पद्मनंदी आचार्य देव का पद्मनंदी पंचविंशति में एक श्लोक है, इसका उद्धरण किया है, तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तत्प्रति प्रीति चितेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति आत्मा के प्रति प्रीति चितेन, आत्मकल्याण की प्रीति उत्पन्न हुई हो, रुचि उत्पन्न हुई हो, प्रीति माने रुचि, और उसने ये आत्मकल्याण की परमार्थ की बात इस प्रकार से रुचि से प्रीति से सुनी हो। आचार्य श्री कहते हैं कि यह भव्य है, क्या है वो भव्य है, निश्चय से वह भव्य भावी अल्प भावी काल में निर्वाण का पात्र है, भाजन मैंने पात्र है। तो आचार्य श्री ने मुमुक्षु की तत्व रुचि को देख करके इस तत्व रुचि में निर्वाण पद को देख लिया, क्या देखा, सम्यक दर्शन को नहीं देखा, निर्वाण पद को देख लिया। निर्वाण होगा इसका सम्यक दर्शन होगा वो कहने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या है, नीचे जो तीन पंक्ति है उसमें इसका अर्थ क्या है कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से अंदर की आत्मा की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता ने आत्मा की प्रसन्नता, चित्त मैंने आत्मा लेना, यहाँ इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, आत्मा की बात सुनते उसको बहुत रुचि और बहुत प्रीति होती हो, वह भव्य पुरुष भविष्य में होने वाले मुक्ति का अवश्य भाजन होता है, उसकी भविष्य की मुक्ति आचार्य श्री ने देख ली। तो ये मुमुक्षु की भूमिका में हमारे परिणाम आत्मस्वरूप की बात सुनने में कितना प्रसन्न आत्मा होता है वो टैली करने की चीज होती है। अगर होता है तो उसका निर्माण बहुत अल्पभावी काल में है, नहीं होती है तो हमारी रुचि प्रति संसार में बहुत है ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। यहाँ तक।